पार्थ इस वक्त सुनैना के पास आया हुआ था। उसने सुनैना को इशिका के ट्विन्स होने की बात बताई। पहले तो अचानक ही पार्थ के मन में इशिका को लेकर अलग अलग जज्बात पैदा होने लगे, तो फिर बाद में इशिका के ट्विन्स होने की बात सुनकर वो अपने प्लान से पीछे हटने के बारे में सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि ट्विन्स को कंसीव करने के साथ इशिका को और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। पार्थ को अपने कदम पीछे लेते देखकर सुनैना ने उसे अपनी तरफ से मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। उसने नकुल का एग्जाम्पल दिया कि कैसे नकुल ने भी उसे धोखा दिया था। राजवंश फैमिली के खून में ही धोखा था, ये कहकर सुनैना उसे उकसाने लगी। पार्थ चुपचाप उसकी बातों को सुन रहा था। उसे चुप देखकर सुनैना ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में कहा, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन आज के बाद अपनी माँ को भूल जाना। तुम्हारी आँखें कुछ और कह रही हैं पार्थ, जानती हूँ। वो लड़की खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, कोई भी लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पर वो किसी की पत्नी है और अब माँ भी बनने वाली है। अपने भतीजे नक्श को ही देख लो, उसके चक्कर में कितनी बेवकूफियां कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी वही गलतियां करे। संभल जाओ, मेरे लिए भले ही कुछ मत करो, लेकिन खुद की जिंदगी बर्बाद मत होने दो। अपनी बात कहकर सुनैना वहां से जाने को हुई, तभी पार्थ ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मेरे दिल में उसे लेकर कुछ नहीं है, बस वो माँ बनने वाली है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि प्रेग्नेंसी में औरत को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। ऊपर से जुड़वां बच्चे हैं मॉम, इशिका जेल में रही तो। पार्थ की बात पूरी होने से पहले ही सुनैना ने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, मुझे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन मत दो पार्थ, तुमने अपने कदम पीछे ले लिए, मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती, फिर चाहे वजह कोई भी क्यों न रही हो। मुझे भी सालों पहले तुम्हें अबॉर्ट करने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं मनाती, जिस तरह तुम्हें अब उनसे बदला लेने का पछतावा हो रहा है। सुनैना जानबूझकर पार्थ को कड़वी बातें सुना रही थी ताकि वो अपना फैसला बदल दे। पार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा, मुझे किसी से कोई सिंपथी नहीं है मॉम, तो प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए और ना ही मुझे मेरे फैसले पर किसी तरह का पछतावा है, बस इतना कि प्रेग्नेंसी में मैं उसे जेल नहीं भेजना चाहता था। जानती हूँ उसकी कोई गलती नहीं है, पर वो अभिमन्यु राजवंश की पत्नी है, यही वजह काफ़ी है उसे सज़ा देने के लिए। अभिमन्यु की और कोई कमजोरी नहीं है जिस पर तुम प्लान बनाकर उसे बर्बाद कर सको, तो तुम्हें इशिका को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना ही होगा। आगे से मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें नहीं सुननी है पार्थ, सुनैना ने सख्त आवाज में कहा। पार्थ ने सुनैना की बात पर हामी भरी और वहां से चला गया था। सुनैना को पार्थ पर पूरा यकीन था, वो उसे कभी पीछे से धोखा नहीं देगा, जैसे नकुल ने दिया था। वहीं दूसरी तरफ इशिका केशव और राधिका के साथ डाइनिंग टेबल पर थी। आज उन दोनों को नॉर्मली साथ में बातें करते देखकर इशिका को बहुत अच्छा लग रहा था। इशिका ने उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, कितना अच्छा होता जो लाइफ में सब कुछ सही से चलता। उस टाइम अगर माँ ने आदर्श सिंघानिया पर यकीन करके घर नहीं छोड़ा होता तो डैड और माँ साथ में रह रहे होते, ईशानी हमारे पास होती, ईशानी की लाइफ अच्छी होती और उसे तरुण जैसे इंसान से शादी नहीं करनी पड़ती। अब सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, क्या हो जाए जो माँ और डैड एक बार फिर साथ आएं? इशिका उन दोनों की तरफ देखते हुए फ्यूचर का सोचने लगी थी। वहीं उसे खाना छोड़कर इस तरह खोया हुआ देखकर केशव ने तेज आवाज में कहा, अभिमन्यु के बारे में सोच रही हो, पहले कहती तो उसे भी कॉल कर देता। केशव की तेज आवाज से इशिका का ध्यान टूटा, उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर ध्यान कहाँ है तुम्हारा, कब से देख रही हूँ, खाना खाने के बजाय हम दोनों को देख रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, राधिका ने इशिका को घूरते हुए पूछा। इशिका की नजरों से उसे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था कि वो क्या सोच रही होगी। इशिका ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, यही सोच रही थी कि काश मेरे पास कोई टाइम मशीन होती, ये पॉसिबल तो नहीं है, पर मेरा बस चलता तो मैं पास्ट में जाकर सब कुछ सही कर देती, पास्ट का पता नहीं लेकिन फ्यूचर जरूर मेरे हाथ में है, क्या आप दोनों। इशिका की बात पूरी होने से पहले ही राधिका ने उसे तुरंत टोकते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो नहीं हो सकता, हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं इशिका। राधिका समझ गई थी कि इशिका क्या कहने जा रही थी। केशव को भी इशिका का इरादा समझ आ गया था, उन्होंने राधिका की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर रुका हुआ हूँ, हमेशा उम्मीद रहती थी कि तुम कभी तो मुझसे ठीक से बात करोगी, मेरे पास आओगी, अब सब ठीक क्यों नहीं हो सकता है राधिका, जवाब दो मुझे। केशव, वो तो बच्ची है, लेकिन तुम तो समझदार हो, मैं यहाँ अपनी पहचान छुपा कर रह रही थी, अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो वे जान जाएंगे कि पहले हमारे बीच क्या रिश्ता था, लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, राधिका ने उसे समझाते हुए कहा। क्या अभी भी तुम्हें खुद से ज्यादा लोगों की बातों का फर्क पड़ता है? कौन है वे लोग? क्या हमारे कुछ लगते हैं जो हम उनके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी की खुशियों का फैसला लें? तुम एक बार हाँ तो कहो, मुझे सबका मुंह बंद करवाना अच्छे से आता है। केशव ने सख्ती से जवाब दिया। उन्होंने बातों बातों में राधिका को प्रपोज कर दिया था। राधिका हैरानी से केशव की तरफ देख रही थी। केशव ने भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह अचानक से राधिका को साथ आने की बात कहेगा। वो तो बस उससे माफी मांगना चाहता था, इसलिए उसे वहां बुलाया था। केशव के पहल करने पर ऋषिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बच्चों की तरह सिद्ध करते हुए राधिका से बोली, प्लीज माँ हाँ कर दीजिए, मेरे बच्चे भी अपनी नानी और नानू को साथ में देखना चाहते हैं, मेरे लिए हाँ बोल दीजिए, प्लीज प्लीज। राधिका ने ऋषिका को आंखें दिखाई तो वो मुंह बनाते हुए चुप हो गई थी। केशव तो वैसे भी राधिका के आगे कुछ बोल नहीं पाता था। मेरा खाना हो गया है, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी बात खत्म करके बाहर आओ, राधिका बीच डिनर से उठते हुए बोली। राधिका के खड़े होने से पहले ही केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उसकी इस हरकत पर राधिका उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। मुझे ऐसे मत देखो, अपना खाना खत्म करके जाओ, अगर तुमने जिद की तो मैं भी अपनी जिद पर आ जाऊंगा, और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि अगर मैं जिद पर आया तो क्या हो सकता है, केशव ने वार्निंग देते हुए कहा। तो राधिका चुपचाप बैठ गई थी। राधिका और केशव के बीच एक अनकहा सा रिश्ता देखकर ऋषिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। डिनर हो जाने के बाद राधिका तुरंत बाहर चली गई। वहीं केशव को बाय बोलने से पहले ऋषिका उसके पास आई और उसके सीने से लगकर धीरे से कहा, डोंट वरी मैं उन्हें मना लूंगी। हाँ लेकिन ज्यादा जिद मत करना वरना वो गुस्सा हो जाएगी, केशव ने सिर हिलाकर कहा। मुझे जिद करना नहीं आता है डैड, बस प्यार से मनाऊंगी, ऋषिका ने जवाब दिया और फिर उन्हें बाय बोलकर राधिका के पास चली गई थी। ऋषिका जिस तरह से केशव के सामने राधिका के आगे जिद कर रही थी उसके बाद राधिका उनसे नाराज हो गई थी। गाड़ी में आने के बाद भी राधिका ने ऋषिका से बात नहीं की तो ऋषिका ने उनके करीब खिसक कर जबरदस्ती राधिका को गले लगा लिया। क्या अब क्या आप मुझसे नाराज हो जाएंगी? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस एक छोटी सी ख्वाहिश रखी है जो कि सिर्फ मेरी तरफ से नहीं मेरे बेबीज की तरफ से भी है, ऋषिका ने पपी आइज बनाकर कहा। बच्चों के नाम पर ब्लैकमेल मत करो, समझने की कोशिश करो बेटा, ये पॉसिबल नहीं है, हमारी उम्र भी तो देखो, राधिका ने उसे समझाते हुए कहा।
उम्र से कुछ नहीं होता है, वैसे भी आप इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो, आपकी उम्र तक आने वाले लोग भी शादी करते हैं, प्लीज मान जाओ ना, ऋषिका प्लीडिंग वॉइस में बोली। पर राधिका उसके कहना सुनने वाली थी। वो पूरे रास्ते राधिका को मनाती रही और राधिका उसे कोई ना कोई बहाना देकर मना करती रही। राजवंश विला पहुंचते ही राधिका तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कमरे की तरफ पढ़ने लगी तो वहीं ऋषिका मायूसी से बाहर आ रही थी। अभिमन्यु उसके आने का इंतजार कर रहा था। जब उसने ऋषिका को उदास देखा तो वो तुरंत उसके पास गया। अब तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के साथ अकेले जाने से पहले सोचना चाहिए था ना, वे लोग एक म्यान में पड़ी दो तलवारें हैं जिन्हें कभी साथ नहीं रखा जा सकता, अभिमन्यु ने हल्के तरीके से कहा। ऋषिका को अच्छा फील करवाने के लिए अभिमन्यु ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। ऋषिका ने अपना चेहरा उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा और मुंह बनाकर कहा, मुझे उन दो तलवारों को सिर्फ एक साथ ही नहीं रखना बल्कि उनकी शादी भी करवानी है, मेरी माँ भी खुशियाँ डिजर्व करती हैं जो कि उन्हें कभी नहीं मिली। ऋषिका का इशारा समझते ही अभिमन्यु ने हैरानी से सिर हिलाया और बोला, इम्पॉसिबल, दोनों ही जिद्दी हैं, सबसे पहले अपने डैड को मनाओ जो अपनी जिद में आकर कुछ भी कर सकते हैं, मिसेस सिंघानिया तो बहुत सीधी हैं। तुम जितना आसान समझ रहे हो उतना भी नहीं है, डैड पहले से माने हुए हैं पर इस बार मॉम जिद कर रही हैं, तुम उन्हें जितना सीधा समझते हो उतनी भी नहीं है वो, ऋषिका ने जवाब दिया। वहां जो भी हुआ अभी ऋषिका ने अभिमन्यु को उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। ठीक है फिर मैं उनसे बात करके देखता हूँ, फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा पूरा फोकस तुम्हारी कंपनी को पब्लिक करने में हो, अभिमन्यु ने ऋषिका से अलग होकर गंभीर आवाज में कहा। ऋषिका ने उसकी बात पर हामी भरी। अभिमन्यु ने कुछ पल रुककर अचानक कहा, ऋषिका मुझे पार्थ का कहना सही नहीं लगा पर मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है, क्या तुम चाहती हो कि डॉक्टर अनामिका की आईडी भी रिवील कर दी जाए? ऋषिका इस बारे में थोड़ा सोच में पड़ गई थी। पार्थ जो कह रहा था वो सच था, बार बार इस तरह आईडी रिवील करना और एक बड़ा फंक्शन रखना काफी हेक्टिक था, लेकिन साथ ही डॉक्टर अनामिका की आईडी रिवील होने के कारण उसके ऊपर अनजाने खतरे भी आ सकते थे। पार्थ तो ये सब अपने फायदे के लिए कर रहा था ताकि कल को ऋषिका जो प्रोजेक्ट कर रही है उसके फेल होने पर सारा इल्जाम डॉक्टर अनामिका पर आए, तब लोगों को पता होना चाहिए कि डॉक्टर अनामिका ही ऋषिका सिंघानिया है। ऋषिका इस बारे में सोचते हुए फैसला ले रही थी तभी अंजलि उनकी बातों के बीच आ गई थी जिसने उनकी बातें सुन ली थी। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, एक बाहर वाले की बात मानकर तुम लोग अपना डिसीजन ले भी कैसे सकते हो, अंजलि उनके बीच में आते हुए सख्त आवाज में बोली। अनजाने में ही सही, लेकिन अंजलि ने अभिमन्यु को गुस्सा करने का एक और मौका दे दिया था जो छुपाकर उनकी बातें सुन रही थी। अंजलि और अभिमन्यु के बीच एक और झगड़ा होने वाला है,
क्या लगता है इशिका क्या फैसला लेगी? अगर उसने खुद की आईडी रिवील की तो उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। क्या पार्थ अपने मॉम के सामने अपने कदम पीछे लेगा? ये तो जल्दी पता चल जाएगा। वैसे क्योंकि कहानी के ज्यादा पार्ट्स बचे नहीं हैं, चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।